तो फिर से मीमांसा कर। तूने जिस ब्रह्म को जाना, जिस आत्म चैतन्य को जाना, तू कहता है कि तूने अच्छी तरह से जान लिया। मैं कहूंगा वत्स तू जा, तो फिर से अच्छी तरह से विचार कर, चिंतन कर कि क्या तूने सचमुच में उसे जाना है। और यह जब गुरुजी कहते हैं तो वह चला जाता है, चला जाकर के वापस जाकर के साधना करता है। और उसके पश्चात आया, आकर के कहता है गुरुजी को प्रणाम करके। गुरुजी ने पूछा क्यों, ठीक है साधना ठीक चली, कुछ कहना है? हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से साधना ठीक चली, आपने जिस तत्व पर चिंतन करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया, तो क्या फल मिला? मन्य विदितम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद जान पा रहा हूं। कितना मिनट हो गया, पहले तो उसकी बात थी सुवेद, मैंने जान लिया अच्छी तरह से। गुरुजी ने जब बताया तो आकर के कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद कुछ जाना है। एडिंगटन है, बड़े वैज्ञानिक, आप पढ़ते हैं उनका नाम, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि जब हम लोगों ने विज्ञान पढ़ना शुरू किया और विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया तो हमको ऐसा लगने लगा कि बस हमने सब कुछ जान लिया, अब दुनिया हमारे लिए अजाना नहीं रही। संसार को चलाने वाले जितने नियम हैं उन नियमों को हम हस्तगत कर लेंगे, ऐसा लगा। न्यूटन ने जब लॉज ऑफ मोशन निकाले और उसके बाद जब यह सारा का सारा बता दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया, तो विज्ञान के क्षेत्र में हम जो लोग वैज्ञानिक थे ऐसा मानते थे कि बस अब सब कुछ जानना हो गया। पर आज हम देखते हैं हम इस संसार की गहराई में जितना प्रवेश करते जा रहे हैं, प्रकृति की गहराई में, प्रकृति के नियमों की गहराई में, उतना ही हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं जाना है। यह तो इतना विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, अनंत है, कि हमने कुछ नहीं जाना, यह अनुभूति आज हो रही है। कैसा अद्भुत है, आप विज्ञान की दृष्टि से देखें या आप अध्यात्म की दृष्टि से देखें, जो कम जानता है उसको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, पर जो बहुत अधिक जानता है उसको लगता है कि मैंने तो कुछ ही नहीं जाना, मैंने तो अभी तो कहीं पर किसी किनारे को भी पकड़ा नहीं है, ऐसा उसका बोध होता है जिसके भीतर में इतना ज्ञान। तो यहां पर वही कह रहा है आकर के, शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपकी कृपा से मुझे दृष्टि मिली, नहीं तो मैं तो ऐसा ही मानता था कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया है, ऐसा लगता है कि मैंने उस तत्व को जान लिया। मन्य विदितम, बहुत विनीत भाव से, किस प्रकार से तुमने जाना? गुरुजी ने पूछा, अच्छा बताओ, ठीक है तुम कहते हो कि तुमने जाना, किस प्रकार से जाना? ना हम मन्ये सुवेदेति, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने अच्छी तरह से जान लिया। नून वेदेति वेदच, पर यह भी नहीं कहता गुरुदेव कि मैंने नहीं जाना है। योनस तद्वेद तद्वेद नून वेदेति वेदच, हम में से जो लोग ऐसा जानते हैं उस आत्म तत्व के संबंध में कि न तो मैं उसे जानता हूं और न तो मैं उसे नहीं जानता, वही ठीक ठीक जानता है। देखा आपने, बताने का जो क्रम है यह क्रम कैसा विचित्र है, विरोधाभास है, दिखाई देता है। एक बार फिर देखने की चेष्टा करें, सुवेद का मतलब क्या है? अच्छी तरह से जानने का मतलब जो इंद्रियों की पकड़ में आए, जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का तात्पर्य आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ये इन ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से जो ज्ञान आता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण का मतलब, प्रमा माने ज्ञान, और प्रमाण का मतलब जिस तरीके से ज्ञान आए, ज्ञान आने की पद्धति, ज्ञान की प्रक्रिया, उसको कहते हैं प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण माने जो बिल्कुल आंखों से देखा जाए, कानों से सुना जाए। तो आत्मा के संबंध में क्या ऐसा कहा जा सकता है? कहते नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा तो इंद्रियों की पकड़ का विषय है ही नहीं, बता ही दिया, फिर क्या आत्मा पकड़ में ही नहीं आ सकता? तो फिर उसका ज्ञान कैसे? नहीं नहीं, एक तरीका है, वह तरीका क्या है? अनुभूति का तरीका है, अनुभूति में वह आत्म तत्व आता है। जैसे वेदना किसी ज्ञानेन्द्रिय की पकड़ में नहीं आती, पर अनुभूति की पकड़ में आती है। अनुभूति के द्वारा संवेदना का बोध होता है। ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व का, चैतन्य तत्व का बोध होता है अनुभूति के माध्यम से। हम पढ़ते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में जो ब्रह्म गोष्ठी भरी, वहां पर श्वेताश्वतर ऋषि या जो भी उनका नाम रहा हो, उन्होंने प्रश्न बीज उपस्थित किया। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। और फिर एक एक ब्रह्म व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता था, ब्रह्म का जानकार खड़ा होता है और फिर कहता है कि मेरे मतानुसार इस विश्व का कारण काल है। किसी ने कहा स्वभाव है, तो दूसरे मंत्र में कहा गया है काल स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोगमेशाम न तो आत्मभावात् जीवाप्य निशा सुख दुख हेतु। एक एक व्यक्ति ने एक एक मानो कारण बताया, किसी ने कहा काल, किसी ने कहा स्वभाव, यूं इस प्रकार से। अब यहां पर भगवान भाष्यकार ही इसके भाष्यकर्ता हों या अन्य शंकराचार्य कोई हों, जैसा हमने कहा था हमारा व्यक्तिगत मत है कि आद्य शंकराचार्य ने इस पर भाष्य नहीं लिखा, अन्य किसी शंकराचार्य ने जो उस गद्दी पर आसीन हुए थे श्वेताश्वतर पर भाष्य लिखा, पर बड़ा सुंदर है। वे कहते हैं कि एक श्वेताश्वतर ऋषि जब सबकी बात सुन लेते हैं तो वे स्वयं उठ करके खड़े होते हैं और फिर वे क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखिए आपने कहा कि संसार का कारण, विश्व का कारण, जगत का कारण काल है। आप में से एक ने कहा वह स्वभाव है, आप किसी ने कहा नियति है, किसी ने कहा यदिच्छा आकस्मिकता एक्सीडेंटलिज्म यह है, आप में से पांचवें ने कहा कि संयोगमेशाम इन सबका मिला जुला, सब मिलजुल करके संसार को उत्पन्न करते हैं। पर मेरा अपना एक विनीत मत है। वह क्या मत है, मैं ऐसा कहूंगा कि इनमें से कोई भी इस विश्व का कारण नहीं है। तब फिर कारण क्या है, वह ब्रह्म ही कारण है, वह चैतन्य ही कारण है। एवं पक्षांतराणि निराकृत्य प्रमाणांतर अगोचरे वस्तुनि प्रकारांतरम अपश्यंतः ज्ञान योगानुगमेन परम मूल कारणम प्रतिपेदिरे। देखा उस तत्व को पक्षांतराणि निराकृत्य, जो पक्ष रखे थे अन्य ब्रह्मविद लोगों ने उन पक्षों का निराकरण किया। श्वेताश्वतर ऋषि ने कहा कि यह ठीक नहीं, यह ठीक नहीं, काल ठीक नहीं, स्वभाव ठीक नहीं, सबका सम्मिलित योग वह भी ठीक नहीं। और फिर कहा कि पक्षांतराणि निराकृत्य प्रमाणांतर अगोचरे वस्तुनि प्रकारांतरम अपश्यंतः। तो बाकी ब्रह्मविद लोगों ने कहा कि आप प्रमाण बताइए, आप जो कहते हैं कि वह ब्रह्म व आत्म चैतन्य इस संसार का कारण है, प्रमाण दीजिए। तो कहा श्वेताश्वतर ऋषि ने, भगवान यह प्रमाण के अगोचर है, इसको प्रमाण के भीतर में बांधा नहीं जा सकता है। यह जो आत्म चैतन्य है वह किसी प्रमाण की सीमा में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, फिर हम कैसे आपकी बात को माने। बाकी ऋषियों ने कहा वह जो प्रमाण की पकड़ में नहीं आता है, प्रकारांतरम अपश्यंतः, एक भिन्न प्रकार से उसे देखा जाता है, ध्यान योगानुगमेन परम मूल कारणम प्रतिपेदिरे, ध्यान योग का अनुगमन करते हुए उस परम मूल कारण को उन्होंने पा लिया। यह जो तरीका है जो मैं बता रहा था कि उसका तरीका कैसा, भिन्न तरीका ही भिन्न, वह प्रमाण के अगोचर पर एक भिन्न प्रकार से वह अनुभव में आता है, वह अनुभूति का तरीका है। तो यहां पर वही कहते हैं नाहम मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेदच, कि गुरुदेव यह मैं अब मानने लग गया कि मैंने अच्छी तरह से जो जाना ऐसा कहा था वह गलत बात थी, पर मैं यह भी कैसे कहूं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि अनुभव हुआ है मुझे। योनस तद्वेद तद्वेद नोन वेदेति वेद च, माने यहां पर शब्दों का खेल है, यह रखने की एक शैली है। जो जानता है कि वह नहीं जानता कि जानता है, असल में वही जानता है, माने यह कि जो जानता है कि वह नहीं जानता कि जानता, मैं जानता हूं कि नहीं, कैसे बोलूं, किस ढंग से उसे समझाऊं। यदि मैं कहूं कि उसे जानता हूं तो लोग कहेंगे बताओ प्रमाणित करो, अब उसको किस प्रमाण में लाकर के समाऊं, यह तो संभव नहीं है। तो यह यहां पर कहा कि हम लोगों में से जो शिष्य उसको इस प्रकार जानता है कि मैं उसे नहीं जानता, फिर मैं उसे जानता भी हूं, तो यह जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को शिष्य प्रकट कर रहा है। गुरुजी ने शिष्य को विचलित करने की चेष्टा की, जैसा भगवान भाष्यकार यहां पर भाष्य करते हुए लिखते हैं कि आचार्य ने एवं आचार्येण विचाल्य मानो अपि शिष्यो न विचचाल। पहले तो गुरुजी ने कहा कि जरा देखें इसके ज्ञान की परीक्षा लें, सचमुच में जानता है क्या। तो उन्होंने पैतरे बदल बदल करके कहा, तो कितने भी पैतरे बदले, अब तो वह अनुभूति संपन्न हो गया है और इसीलिए शिष्य विचलित तो नहीं होता है और क्या करता है, जगर्ज च ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शन आत्मना, गर्जा वह आत्मनिश्चय की दृढ़ता को प्रकट करता हुआ, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया था उस आत्म चैतन्य को और इसलिए किसी भी तर्क के द्वारा विचलन संभव नहीं था, इसलिए जगर्ज व गर्जा ऐसा वह कहते हैं। और उसने इस प्रकार से अपनी अनुभूति को रखा और फिर उसके पश्चात कहते हैं, गुरु कहते हैं ठीक है वत्स, तो बिल्कुल ठीक कहता है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, यह जो तूने उस ब्रह्म तत्व को चैतन्य तत्व को इस प्रकार जाना है कि उसके संबंध में तू कह नहीं पा रहा है कि मैंने अच्छी तरह जान लिया, न ही यह कह पा रहा है कि मैं नहीं जानता हूं, यही ठीक ठीक तू जानता है। वह कैसे, यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। यह गुरुजी कहते हैं तो ठीक कहता है, यस्य मतम तस्य मतम, यस्य अमतम माने जिसके लिए यह तत्व अजाना है वह ठीक ठीक उसे जानता है। अजाना है का मतलब फिर एक अज्ञानी के लिए भी अजाना है, उस अर्थ में नहीं, जो साधक है जिसने इसको जानने की चेष्टा की, अनुभूति प्राप्त की, पहले समझता था कि मैंने जान लिया, उसके पश्चात उसे लगता है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं जाना। हम लोगों ने भी जब शास्त्र को थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, हाँ ठीक है संस्कृत तो उतनी आती थी नहीं, अनुवाद के सहारे पढ़ा, अंग्रेजी का अनुवाद देखा, हिंदी का अनुवाद देखा, ऐसा लगने लगा कि हम शास्त्रज्ञ ही हो गए, जान ही गए। अब जब साधना जीवन में आने लगी, बिना साधना के जब स्वाध्याय हुआ तो ऐसा लगता था कि हम बड़े पंडित हैं, पर जब साधना जीवन में आई, स्वाध्याय फिर से किया, तब ऐसा लगा कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, अरे यह तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो यह हमारे जीवन में ही होता है। आप देखेंगे, आप गीता को एक बार पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ेंगे आपको लगता है कि हाँ ठीक है जान लिया, दूसरी बार पढ़ेंगे आपको ऐसा लगता है कि पहली बार तो मैंने कुछ भी नहीं जाना था, दूसरी बार पढ़ने से और ज्ञान आया। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार मानो ज्ञान और भी चमकता है, और भी निकलता है, और हमें ऐसा लगता है बाद में अरे उस समय जो हमने समझा था कुछ भी नहीं समझा था। और अगर कोई कह दे पहली बार पढ़कर तुमने कुछ भी नहीं समझा है तो बड़ी चोट पहुंचती थी, वाह हमने पढ़ लिया है और ये कहते हैं कुछ भी नहीं समझा है। श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, एक भागवती पंडित किसी राजा के पास गया और कहा कि राजन आप मुझसे भागवत सुन लीजिए। राजा ने कहा ठीक है आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए भागवत और फिर उसके बाद सुनाने आइए। बहुत गुस्सा लगा पंडित को, यह राजा बहुत अहंकारी है, मुझे पढ़ने के लिए कहता है, अरे मैंने तो भागवत पढ़ा है इसीलिए तो आया हूं सुनाने के लिए, पर प्रकट में कुछ बोल नहीं सका, चला गया। उसने एक बार फिर से पढ़ा, राजा ने कहा है तो कोई मतलब होगा, चलो पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ करके आया, कहा कि राजन आपने जैसा कहा था मैंने फिर से भागवत पढ़ लिया है, अब आप भागवत मुझसे सुन लीजिए। महाराज ने कहा कि जाइए एक बार फिर से पढ़िए। इस समय तो उसे और भी गुस्सा आया और वह आ गया, कहा कि राजा बड़ा अहंकारी है, मुझे भागवत पढ़ने के लिए कहता है। अरे उसके कहे अनुसार मैंने फिर से पढ़ लिया भागवत और कहता है एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तीसरी बार भग गया पुनः पढ़ करके, राजन आपके निर्देशानुसार मैंने पुनः भागवत पढ़ लिया है, अब आप भागवत सुनना पसंद करेंगे? राजा ने कहा कि एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, जाइए और फिर मैं उसके बाद भागवत सुनूंगा। अब तो इतने गुस्से में आ गया, कहा कि यह तो बड़ा अहंकारी है, छोड़ो जी। और फिर मन में उठा कि पैसा मिलेगा, कुछ होगा, यश प्राप्ति होगी, इसलिए उसने पुनः पढ़ना शुरू किया। और जब इस समय पढ़ रहा है चौथी बार, तो भागवत में जो शब्द और शब्दों के भीतर जो अर्थ अभी तक ध्वनित नहीं हो रहे थे, शब्द का अर्थ तो आता था पर जो मर्म निहित है वह मर्म उसके भीतर में बज नहीं रहा था, अब मर्म बजने लगा। भागवत पढ़ते पढ़ते भाव आने लगा, भाव आने से लगा अरे ये क्या पैसा, पैसा मिथ्या, नाम मिथ्या, कहां जाना। अब कभी राजा के पास जाने की इच्छा ही नहीं हुई। राजा ने देखा कि पंडित जी आए नहीं, क्या बात है, बहुत समय हो गया। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि पंडित जी को बुला करके लाओ। मंत्री गया, कहा कि आपको महाराज बुला रहे हैं, वे आपसे भागवत सुनना चाहते हैं। कहा कि नहीं, अब महाराज से कह देना कि अब भागवत सुनाने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं बस तृप्त हूं। कहा नहीं फिर भी चलिए। तो कैसे भी पंडित जी राजी होते हैं जाने के लिए, और जाकर के पंडित जी ने कहा महाराज आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी आंखें खोल ली, अब भागवत सुनाने की इच्छा नहीं, आपने पढ़ने के लिए कहा, अब ठीक ठीक लगता है कि मैंने भागवत पढ़ा है, यह प्रश्न। तो इसी प्रकार यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, कि जो ऐसा मानता है कि मैं नहीं जानता, इसका मतलब अज्ञानी भी मान सकता है, जिसको कुछ नहीं मालूम वह सही मानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर यहां अज्ञानी का प्रकरण नहीं है यह मान, यह ज्ञानी का प्रकरण है, जो साधक है उसका प्रकरण है, जिसने जानने की चेष्टा की है उसका यह प्रकरण है। तो यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, और जो ऐसा मानता है कि मैं जानता हूं वह नहीं जानता है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, जो विजानताम है, जो जानकार हैं, अनुभूति संपन्न हैं, उनके लिए आत्मा मानो अजाना है, ऐसा है। और जो अज्ञानी जो नहीं जानते हैं वस्तुतः, अनुभूति जिन्होंने नहीं की है, वे ऐसा मानते हैं कि मैं आत्मा को जानता हूं। यह प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, वैतर्किक प्रणाली, जब कोई वस्तु बहुत सूक्ष्म होती है तो विरोधी गुणों के माध्यम से वस्तु को समझाने की चेष्टा की जाती है, जैसे विज्ञान में भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके गुणधर्म क्या है, किसी ने कहा कि यह पार्टिकल के समान है, कणात्मक है, यह कण के रूप में व्यवहार करता है, पार्टिकल के रूप में व्यवहार करता है। फिर इसके पश्चात वैज्ञानिकों ने देखा कि यह केवल पार्टिकल के रूप में तो व्यवहार नहीं करता, यह तो वेव के रूप में भी व्यवहार करता है, इसकी जो गति है वह तरंग के समान है। तो अब यह कणात्मक है या तरंगात्मक है, यह पार्टिकल है या न वेव है, अब जब इसका निर्णय नहीं हुआ और दोनों आपात विरोधी गुण उसके भीतर दिखाई देने लगे, तो एक नए शब्द का आविष्करण किया गया, यह इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वर्तन करता है, अरे यह वेविकल है, वेव से वेव लिया, पार्टिकल से इकल लिया, मानो वेविकल बनाया। यह विज्ञान के क्षेत्र में है, तो यदि अध्यात्म के क्षेत्र में उस परम गूढ़ आत्म तत्व के संबंध में जो कण से भी इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है, यदि वैतर्किक प्रणाली का सहारा लिया जाए तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। तो यहां पर यही वैतर्किक प्रणाली का सहारा लिया गया और यह बताया गया गुरु के द्वारा। अब फिर कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम, अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। देखो शिष्य, तुम देखोगे जब तुमने इस प्रकार अनुभव उस आत्म चैतन्य का प्राप्त कर लिया, तो प्रतिबोध विदितम मतम, हर बोध में, वृत्ति में, माने मन की हर वृत्ति में, मन जहां भी जा रहा हो उस वृत्ति में आत्म चैतन्य उद्भासित होता है। तो मैं आत्मदृष्टा यदि हो जाऊं तो मेरे सामने ये जो मन की वृत्तियां हैं, तो मन की वृत्तियां मुझे चैतन्यवान दिखाई देती हैं, अपनी चेतनता के कारण नहीं, बल्कि मैं देखता हूं मन की हर वृत्ति के पीछे आत्म चैतन्य है। मैं उस आत्म चैतन्य का अनुभव करता हूं और यह अनुभव करता हूं कि मैं ही वह आत्म चैतन्य हूं। प्रतिबोध विदितम मतम, हर बोध में, हर वृत्ति में मुझे उस आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, और मैं देखता हूं पंखा है, बल्ब है, हीटर है, इत्यादि है, और यदि मैं थोड़े ध्यान से विचार करता हूं तो मैं बिजली को ही देखता हूं, या बिजली ही है जो बल्ब को जलाती है, बिजली ही है जो ट्यूबलाइट को रोशनी देती है, बिजली ही है जो पंखे को चलाती है, बिजली है जो इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के पीछे काम कर रही है। जैसे यह उदाहरण है, वैसे ही अध्यात्म का, अनुभूति का वह उदाहरण है कि मेरे हर बोध में, हर वृत्ति में वही आत्म चैतन्य प्रकाशित है। उसी के कारण हर वृत्ति में चेतनता आती है, नहीं तो वृत्ति तो जड़ है, मन तो जड़ है। यह यहां पर प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम। जब प्रतिबोध विदितम मतम, जब ऐसा हो गया, ऐसा मैंने जान लिया, इस प्रकार से आत्म तत्व को जाना कि वह मेरी हर वृत्ति का प्रकाशक है, हर बोध के पीछे वही प्रकाशक के रूप में विद्यमान है, ऐसा जब मुझे अनुभव हुआ तो अमृतत्वम ही विन्दते। उस समय वह जो साधक है सिद्ध हो जाता है, अमृतत्व का अधिकारी हो जाता है। अमृतत्व का अधिकारी का मतलब मर करके नहीं, हम देखेंगे आगे के मंत्र में आत्मना विन्दते वीर्यम। और क्या करता है, यह जो उसने उस आत्मतत्व को जान लिया, उसके द्वारा उसे वीर्य मिलता है,